ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஜப் தக் இச்சை ரஹேங்கி, சாஹதே ரஹேங்கி, சாஹே பனி ரஹேகி ஹமாரி, தப் தக் ஹமே சோட்டா होना ही पड़ेगा. जब जब चाह की मैंने, तब तब मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया, छोटा महसूस किया. हमें छोटा बनाने वाली हमारी चाह है ना, और ये चाह का नाम ही आकांक्षाएं हैं. यदि मनुष्य के जीवन में आकांक्षा न हो तब दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है. ये आकांक्षा अपेक्षाएं जो होती हैं ये पूरी नहीं होती है तब हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं. इसलिए उपनिषद कहती है ईशा वास इदम सर्वम जगत्याम जगत. ये संपूर्ण जगत जो ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है, माने आच्छादन कर देना. जिस प्रकार आत्मदृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, ईश्वर दृष्टि से संपूर्ण जगत मैं ही हूं, मेरी आत्मा के अतिरिक्त ये जगत विलग नहीं है, भिन्न नहीं है, आत्मा ही है. तो इस प्रकार जगत का जो मिथ्यापन है, जो ये कहा गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो इसका मिथ्यापन है, असत्यपन है, ऐसा नहीं है कि ये जगत नहीं है, ये जगत है. बोले जैसा जगत आपको अज्ञान काल में दिखाई देता है, आत्म स्वरूप से देखने पर ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है. पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, इन इस प्रकार आप पंच तन्म ज्ञाने कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री यथार्थ पंचीकृत में व्याप्त क्या है. बोले एक आत्मसत्ता, सब अपने अपने अपनी स्वरूप में ही, अपनी आत्मा में ही ये सब व्याप्त हैं, इससे भिन्न नहीं है. इसीलिए कहा कि ये जो जगत का मिथ्यापन है, झूठापन है, वो अलग हो जाएगा. अर्थात जगत जिसे हम ये कहते हैं ये मिथ्या, मिथ्या का मतलब ऐसा मिथ्या नहीं है कि है ही नहीं, जगत है ही नहीं, ऐसा मिथ्या नहीं है. बोले मिथ्या का अर्थ है जैसे रज्जु में सर्प, रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, नहीं दिखता है. बोले रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है, जब अंधेरा होता है और भ्रम होता है सर्प का, और भ्रम वसात उसमें सर्प दिखाई दे रहा है, और जिस भ्रम के कारण अब भय किसका है, भय उस रस्सी का नहीं, सर्प का नहीं है, परंतु सर्प की जो भ्रांति बुद्धि में हो गई उसके कारण भय हो गया. रस्सी के अज्ञान के कारण जो भय उत्पन्न हुआ, माने जगत हमारे लिए दुख का कारण कब है, जब जगत का हमें बोध नहीं है. भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण जो जगत दुखदायी हमें प्रतीत हो रहा है, जैसे रस्सी में सर्प वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, और ये काल्पनिक सर्प हमें किसके कारण दिखाई दे रहा है, ब्रह्म के कारण दिखाई दे रहा है. उसी प्रकार जगत जब तक ब्रह्म के कारण आत्मसत्ता से विलग दिखाई देगा, भिन्न दिखाई देगा, तब तक ये संसार हमारे लिए दुख का कारण दिखाई देगा. और जब ज्ञान पूर्व से, विवेक की दृष्टि, तात्विक दृष्टि से आत्मसत्ता में ही जगत की व्याप्तता दिखाई पड़ी, आत्मा की व्याप्तता का बोध होगा, तो जगत की जो भ्रांति है वो समाप्त हो जाएगी. जगत भ्रांति के छूटने पर, जगत के मिथ्यापन के छूटने पर ये संसार हमारे लिए दुखदायी नहीं होगा, संसार दुख का कारण नहीं होगा. इसलिए इसके मिथ्यापन को, जगत के मिथ्यापन को दूर करने के लिए आत्मसत्ता का वो आत्म का बोध, आत्मा की दृष्टि से देखना अनिवार्य. जब तक आत्म दृष्टि से नहीं जगत को देखेंगे, और ये आत्म दृष्टि से देखने के लिए क्या चाहिए, बोले आत्मा का ज्ञान चाहिए. आत्मा के ज्ञान से आत्मा का जगत का दर्शन कर मिथ्यापन को दूर करें और जीवन में उसके लिए तेन तत्तेन भुंजिता, जीवन का जगत का पालन कैसे हो, बोले त्याग पूर्वक आकांक्षाओं से रहे संत इसीलिए किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखे बिना, किसी प्रकार की कोई आग्रह रखे बिना, कोई चाह रखे बिना सहज जीवन जीते हैं नारायण। और उसके साथ कहा क्या कि माँ कश्चिस्व धनम तेन तत्तेन भुंजिता, माँ कश्चिस्व धनम, धन किसका है, धन किसका है माने आत्मा के अतिरिक्त। धन की बात कहूं तो ऐसा लगता है जैसे बाज पक्षी बहुत ऊपर 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 आसमान में उड़ता है, पर गिद्ध कितनी ऊंचाई में उड़ने के बाद भी गिद्ध की दृष्टि कहाँ बनी रहती है, बोले पृथ्वी में बनी रहती है। और पृथ्वी में भी कहाँ बनी रहती है, मरे हुए पशु के ऊपर बनी रहती है। और जहाँ गिद्ध आकाश से देखता है, आकाश में मटराता हुआ आकाश से देखता है पृथ्वी में, क्या देखता है कि कहाँ कोई मरा हुआ पशु पड़ा हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि तो केवल मांस के ऊपर बनी हुई है, उसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि। उसी प्रकार उसको गिद्ध को ये सौभाग्य तो मिला कि वो आकाश में उड़ सकता है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आकाश में उड़ने के बाद भी आखिर उसकी दृष्टि कहाँ, पृथ्वी में मरे हुए मांस में पड़ी हुई है। वैसी दृष्टि न हो माँ कश्चिस्व धनम, अर्थात इतना श्रेष्ठ मनुष्य जीवन और ये श्रेष्ठ आत्म तत्व को प्राप्त करने की योग्यता, और उसको प्राप्त करने के बाद भी हमारी दृष्टि केवल संसार में धन के ऊपर पड़ी रहे, केवल पैसे के ऊपर दृष्टि रहे, बोले ये बात अच्छी नहीं। माँ कश्चिस्व धनम, धन किसका है, अर्थात आत्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे का नहीं, आत्मस्वरूप है। सबसे बड़ा धन, मन कहने का अभिप्राय है ये सबसे बड़ा धन किसका है, बोले सबसे बड़ा धन तो आत्मा का धन है, आत्म रूपी धन। धन वास्तव में किसका है, मतलब धन आत्म रूपी धन है, आत्मा से बढ़कर के और कोई धन नहीं हो सकता। और हमारा समूचा समय, समूची सोच हमारी किसके पीछे पड़ी रहती है, सांसारिक दृष्टि से संसार के धन में हमारी दृष्टि गड़ी रहती है। एन केन प्रकारेण, कैसे भी हमको धन कमाना चाहिए, धन मिलना चाहिए। और आज के इंसान की स्थिति तो ऐसी हो गई है, दुबदुबी किम बदती, मतलब दुबदुबी ढोलक क्या बोलती है, बोले ढोलक पर हाथ मारो तो ढोलक से आवाज निकलती है दन दन दन, और आज के इंसान के अंदर से एक ही आवाज निकलती है धन धन धन, आवाल बच्चा बुड्ढा जो भी है, पैसा पैसा पैसा, धन 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 को लेकर के हम रात दिन केवल हमारा चिंतन एक धन के लिए बनाओ, केवल पैसे के, जो जो कर रहे इसमें हमें क्या लाभ होगा, क्या धन क्या मिलेगा, सबसे पहले हम उस बात पर कार्य के लिए धन देखते हैं कि इससे मुझे मिलेगा क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, धन के लिए हम दिन रात विचार करते हैं। धन तो सबसे बड़ा धन है नारायण, आत्मधन, आत्मा से बढ़कर के माँ कश्चिस्व धनम, माने आत्मा से बढ़कर के और कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन तो सब आत्मा का आत्मा है, इसलिए आत्मवेता, आत्म को जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। और इस मंत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत दृष्टि, इस मंत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत दृष्टि, सब में भगवत स्वरूप का दर्शन, भगवत स्वरूप का दर्शन माने अपने स्वरूप का दर्शन करना, अपनी आत्मा का दर्शन करना सबके भीतर। और आत्म दर्शन कैसे करें, एक बार एक बात मुझे स्मरण हो रही है, एक पंडित जी महाराज ये प्रवचन सुना रहे थे, और प्रवचन सुनाते हुए उन्होंने कहा देखो सर्व में आत्म दृष्टि करो, सब में आत्मा की दृष्टि से देखो, सब में भगवत दृष्टि करो, भगवान को देखो। तो एक नया नया सत्संगी था और वो नया नया सत्संगी सत्संग में गया था, उसने ये पंडित जी से बात सुनी, सुनने में अच्छी लगी, पर सुनने सुनने में फर्क होता है ना, कैसे सुनना चाहिए, किसी माँ का बेटा कैसे सुनना चाहिए ये प्रवचन। बोले किसी माँ का बेटा खो गया हो और उस माँ के आगे उसके बेटे के मिलने की बात कही जा रही हो, उस माँ को उसके बेटे को प्राप्त होने, जिस माँ का बेटा खोया गया है उस माँ के आगे उसके बेटे को प्राप्त होने की बात, मिलने की बात कही जा रही हो, तो वो माँ कितने ध्यान से उस बात को सुनेगी, उसका ध्यान कहीं विचलित होगा, वो कितनी एकाग्रता के साथ वो अपने बच्चे को प्राप्त करने की बात को सुनेगी, वो उसमें एक शब्द भी कहीं चूकना नहीं चाहेगी, और कितनी तत्परता से, कितनी लीनता से, कितनी खो करके वो उस बात को सुनेगी। जैसी एकाग्रता उस माँ के अंदर में है, जिस माँ का बच्चा खोया गया है वो माँ अपने बच्चे को प्राप्त करने की बात जितने ध्यान से सुनती है, उतनी ही ध्यान से जो इन उपनिषदों की बातों को सुनेगा उसी के मन में जाकर कहीं कुछ असर होने वाला है। और नहीं तो सुनते एक बार सुनो या एक करोड़ बार सुनो, कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो हुआ ये कि वो नया नया सत्संगी था, गया था, उसने सुन ली एक बात कि सर्वत्र भगवत दृष्टि। वो वापस जब कथा पूरी हुई आ रहा था, रास्ते में सोचता आ रहा था सब में भगवत दृष्टि, तो उसने इतने में एक व्यक्ति उधर से ये कहता हुआ आ रहा था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। उसने कोई ध्यान नहीं, उसने कहा क्या हटना, किससे हटना, हाथी आ रहा है, मद वाला हाथी आ रहा है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, वो अपनी उसने जाल रहा था। इतने में सामने से हाथी आया, वो पगलाया हुआ था, मस्त हाथी था, और उसने आकर उसे सूंड दिया और पटक दिया, पटक कर उसके शरीर की हड्डी वड्डी टूट गई, और जाकर 6 महीने में वो कुछ ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, और फिर प्रवचन में सुनने आया। मन में बड़ा भारी रोष लेकर, क्रोध लेकर के जाऊंगा और अब की बार उस पंडित को बिल्कुल ठीक ठीक समझाऊंगा कि गलत गलत बातें बोल करके वो इस तरह से हमें बहकाता है। पंडित जी के पास आया और आके खूब क्रोधित होके कहने लगा, पंडित जी आपकी बात मैंने सुनी, क्या मुझे फल मिला, देखो सारी हड्डी टूट गई, 6 महीने से बिस्तर में पड़ा हूँ, क्या मेरी दशा हो गई। पंडित जी ने उससे कहा कि भैया क्या हुआ, बोले आपने कहा था सब में भगवत दृष्टि करना, सब में भगवान को देखना, मैंने हाथी में भगवान देखा, उसका फल मुझे ये मिला। तो इतने में पंडित जी ने कहा ये तो बात सही है, तूने हाथी में भगवान को देखा, पर ये बता उससे पहले भी कुछ हुआ था। बोले हाँ हुआ था, क्या हुआ था, एक आदमी आया था कहता हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो तुमने उसमें भगवान को नहीं देखा, उसे भगवान उसमें भी भगवान देख लेता और उसके कहे से तू हट जाता रास्ते से, तो तुझे ये दशा तेरी नहीं, पहले भगवान ने तुझे सावधान किया था, भगवान ने तुझे पहले सावधान किया था पर तू हटा नहीं, और जिसके भगवान की आज्ञा नहीं मानी उसके कारण ये तेरी दशा हुई। तो कहने का अर्थ मेरा यह था कि जहाँ हमारी मतलब की बात हो वहाँ हम ये सोचें कि सब में भगवान है, और जहाँ मतलब की बात न हो वहाँ द्वेष करें, ये इसका अर्थ नहीं है। सर्वत्र भगवत दृष्टि का मतलब वो सब में माने जिसको हम ये देखते हैं, ये जिसे हम ये करार देते हैं ये मेरा दुश्मन है, दोस्त में भगवान दिखे दुश्मन में भगवान न दिखे ऐसा नहीं है, वो सर्वत्र माने वो दुश्मन में भी और वो शत्रु में भी, वो मित्र में भी वो शत्रु में भी, वो अपने में भी वो पराये में भी, जहाँ अपना पराया तेरा मेरा सत्य दोस्त दुश्मन का भेद न रह जाए, उससे पार करती हुई सचराचर में जगत्याम जगत, माने ये जो व्याप्त जगत है, व्यापक जगत है, संपूर्ण व्याप्त जगत के भीतर वो सब में एक आत्मदृष्टि रखने वाला, एक देवो से आत्मभूत, अपने समस्त जगत में आत्म रूप से दर्शन करने वाला, ऐसी जो दृष्टि है मेरी आत्म सत्ता से अलग कुछ नहीं है, वाचनीय माने आच्छादित कर देता है, ढक देता है सबको उसी तरह से अपनी। कैसे ढक लेता है? जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंख में हरे रंग का चश्मा पहन लेता है, उसकी दृष्टि जहाँ जाती है उसे हरा ही हरा नजर आता है। कोई अपने आंख में श्याम रंग का चश्मा पहन ले, काले रंग का चश्मा पहन ले, उसे सब काला ही काला नजर आता है। उसी तरह से अपनी दृष्टि से संपूर्ण जगत को जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, जहाँ जाए जिसमें देखे, जैसे चश्मा आँख में पहन लेने से काले रंग का काला ही काला दिखाई देता है, हरे रंग का चश्मा पहनने से हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी तरह से ये जगत अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि को बदल कर, अपनी दृष्टि में क्या है, अपना निज स्वरूप आत्म दृष्टि, अपनी आत्मा का दर्शन करके जब दृष्टि बाहर निकलती है तो सर्वत्र आत्मा का दर्शन करती है। अपनी दृष्टि आत्मभूत हुए बिना, आत्मा में अपनी दृष्टि को स्थिर किए बिना, बाहर आप जगत में आत्मा का दर्शन करना चाहोगे, नहीं हो सकेगा नारायण। इसलिए पहले अपनी दृष्टि को अपने अंतर्गत करो, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, आत्मा के स्वरूप को समझ करके अपनी दृष्टि को माने अपने विचार को अपने भीतर अपने स्व में स्थित करें, और स्व से निकला हुआ जो विचार होगा वो आपको सर्वत्र आत्म दर्शन कराएगा, आत्मभूत कर, संपूर्ण भेद भाव को समाप्त करके सर्वत्र परमात्म दर्शन कराता हुआ जगत में रहते हुए किसी प्रकार की कोई चाह आकांक्षा को त्याग करके, और माँ कश्च स्वधनम, ये धन किसी का नहीं है, ये जो बाहरी धन है इस धन, ये धन नहीं है, वास्तविक धन जो है वो तो केवल आत्मा का धन है, और इसलिए बाहर से केवल जिस धन को कमाने के पीछे दिन रात आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये धन जिसे तुम अपना कहते हो वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, जिसे आप पराये का कहते हो वो भी पराये का नहीं है, ये धन जिसका समझ रहे हो ये उसका भी नहीं है, और उस जिसका समझ रहे हो उसका भी नहीं है तो ये तुम्हारा भी नहीं है। हम समझे कि ये मेरा है तो मेरा भी नहीं है, हम समझे कि ये दूसरे का है तो ये दूसरे का भी नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये तो केवल आत्म रूप का है, ये धन धन नहीं है, आत्म सत्ता से विलग कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमें उपदेश देती है ये उपनिषद, ईशावास्य का ये पहला जो मंत्र है, ये हमारे जीवन को हमें जीने की दिशा देती है, हमें कैसे जीवन जीना है, किस रीति से, किस दृष्टि से, क्योंकि विधि हमें जीवन जीने की दिशा देती, विधि बताती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, ईशावास्य की दृष्टि से हमें जीना चाहिए, ये दृष्टि हमें देती है उपनिषद कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, परंतु हमारी दृष्टि जीते हैं हम अपने भोगों के लिए, अपने सांसारिक ये जगत के लिए, वास्तव में जगत को जगत रूप से देखो नारायण। मैं हमेशा कहती हूँ जगत में रहना कोई बुरी बात नहीं है, जगत में रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर जगत में रहो, जगत को पहचान के रहो, हर चीज में आप पहचान पहले प्रयोग में करते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जाते चढ़ते हैं कपड़े की दुकान में, पहला कपड़ा खरीदने से पहले हाथ में लेकर ये कपड़ा कौन सा है उसकी आप पहचान करते हैं, सोना खरीदने के लिए सुनार की दुकान में चढ़ते हैं, सोने हाथ में लेकर ये कितने कैरेट का है उस सोने को पहले आप अच्छी तरह से जांचते परखते हैं, और उसी तरह से हीरा खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु लेने के लिए आप कहीं भी जाते हैं, अरे आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं उसे भी पहले देखते हैं ये ठीक है कि नहीं है, फल लेने जाते हैं वो भी देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। कौन सी चीज ऐसी है जो आप बिना जांचे परखे बिना देखे उसे आप उठा लेते हैं? हर चीज में आप पहले उसको जांच परख करके देख करके उसे सोच करके तब उसे प्राप्त करना चाहते हो। तो ये संसार भी ये जीवन भी इसे सोचो तो सही। इस जगत में रहने से पहले हम जगत के विषय में सोचें तो सही कि वास्तव में ये जगत क्या है जो दिखाई पड़, जगत से अभिप्राय शरीर सहित जो कुछ ये दिखाई पड़ रहा है ये सब दिखने वाला क्या है, जिसे मैं देख रहा हूँ ये दिख क्या रहा है क्या? यदि आप इस जगत के संबंध में विचार करेंगे तो आपको विचार करने पर, आप ये सोचने पर विवश होंगे कि वास्तविकता की इसकी सत्यता क्या है। और सत्यता को खोजने के लिए जब आप कोई गंभीर विषय आपके सामने आता है ना, विचार कर कोई बात आपके सामने आती है तो आप क्या करते हैं उस समय? उस समय अपने आप को सब काम छोड़ करके, बाहरी सारी प्रवृत्तियों को छोड़ कर ना आप उस समय कुछ करते, सब एकदम स्थिर हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं अपने आप में। जब गंभीर होते हैं, मौन होते हैं, एकाग्र होते हैं तो तब आप उसमें उस बात का कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। जब तक आप अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से अलग कर समग्र इंद्रियों को मन सहित मौन नहीं करेंगे, अपने भीतर नहीं आएंगे और भीतर आकर समस्त आकांक्षाओं को इच्छाओं को छोड़ करके जैसे उस समय आप उस बात के लिए गंभीर हो जाते हैं, इसी प्रकार गंभीरता पूर्वक जब अपने भीतर गंभीर चिंतन से आप देखेंगे तो तब आपको जगत की सच्चाई नजर आएगी कि वास्तव में ये जगत मेरे से कुछ अलग नहीं है, मेरी आत्मसत्ता में ही प्रतिभाषित है। जगत क्या है? प्रतिभाषित सत्ता है, दिखता है पर है नहीं। इसलिए इस प्रतिभाषित सत्ता को क्या क्या कहा गया? ये मिथ्या है। जिसका प्रतिभास तो है, जो भास तो रहा है, दिख तो रहा है परंतु है नहीं, दिखता है नहीं। जैसे मरुमरीचिका रेत में जल दिखता है मृग को पर है नहीं, उसी प्रकार ये जगत जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। तो ये कहाँ से दिखता है? बोलिए दिखता कहाँ से है? ये दिखता मेरी आत्मसत्ता, मेरी आत्मा से है, आत्मा से है। जो चीज आत्मा से दिखाई पड़ रही है वो आत्मा से अलग नहीं है। ये जगत दिखाई किससे पड़ रहा है? बोले आत्मा से दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए ये जगत किस में है? जगत के रूप में मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप में ही दिख रहा है। मुझ जैसे स्वप्न कहीं अलग नहीं है, स्वप्न जो दिखता है वो मेरे मन में ही दिखता है, मेरे मन से अलग नहीं है। उस अलग अलग स्वप्न, स्वप्न की सृष्टि मन से कहीं अलग नहीं है। उसी प्रकार मैं से अर्थात आत्मा से अलग ये जगत नहीं है। ये जानना ही जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा मां गृध कश्च सुधनम। ये संसार का धन किसी का नहीं है, अर्थात आत्मा ही धन है और उस धन को ही हमें प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंत्र का सरल भावार्थ यही है, सहज भावार्थ ये सर्वत्र आत्मदृष्टि हो और आत्मदृष्टि में जगत दिखाई पड़े, जीवन में किसी प्रकार की कोई आकांक्षाएं न हो, चाह न हो और धन के प्रति लोलुप्तता न हो, धन का लालच मन में न हो। लालच में पड़ करके हम लोभ में आकर के धन के लोभ में बड़ा 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 अनर्थ कर डालते हैं और धन के कारण हम ये नहीं देखते हैं क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एन केन प्रकारेण नीति से अनीति से अच्छाई से बुराई से हमें धन मिलना चाहिए। जो धन हम इकट्ठा करते हैं नारायण, वो धन हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। उस धन से जो भोग हमें मिलने वाले हैं, उन भोगों से हमारे जीवन में कुछ तृप्ति मिलने वाली नहीं है। भोगानुभुक्ता वैवेव भुक्ता, हम समाप्त हो जाएंगे पर भोग समाप्त होने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे भोगों का त्याग करते हुए, ऐसे धन का त्याग करते हुए सदाचरण से हम अपने आप को अपने स्वरूप को विचार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।